अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञेयराते। अन्नश्यामलिङ्क्षताभिरमितो मन्दीकृतेन्देवरं जड्डञ्जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्पन्दनिवेशितो ज्वलभुजं ध्यायेन्दामो। श्री गुरु गौरांग की कृपा से हम लोगों की आज की परिक्रमा निर्विघ्न रूप और अच्छी तरह समाप्त हुई। आज हम लोग यहाँ वृंदावन से मधुबन, तालवन और तालवन से ही कुमुद वन को प्रणाम किया, बहुला वन, और उसके बाद में हम लोग मानसरोवर राधा रानी, यहाँ पर राधा जी ने मान किया था, कृष्ण ने उनको मान को छुड़ाया। उसके बाद में माट वन होते हुए हम लोग भांडीर वन में गए, वहीं से भद्र वन को प्रणाम किया और वहाँ पर हरी कथा के पश्चात में प्रसाद हो करके पास ही में बंसी बट सिद्धाम इत्यादि का हम लोगों ने दर्शन किया। तुम गए छिले?
ना 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 सुरी भालो ना जानो।
ताले जानो ना। बोलते पारबो? बोलो बांग्ला तो कुछ बोलो।
মধুর আমি সত্যজীবী এক দরিদ্র প্রবল প্রতাপী তিনি সমস্ত দেশে নানা প্রকার ভক্তগণের প্রতি প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারে পীড়িত করতেন। সেই মধুচৈত্যকে ভগবান বধ করেন এই জন্য ভগবানের নাম মধুসূদন। পরবর্তীকালে ত্রেতাযুগের এখানেও মধু নামে আরেক দৈত্য তিনি রাজত্ব করতেন, অত্যন্ত প্রবল প্রতাপী পরাক্রমী, ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পরায়ণ, সাধু সন্ত মুনি ঋষিদের প্রতি অত্যাচার, তাদের সমস্ত আচার আচরণকে প্রশ্ন করে দেন। এইভাবে অত্যাচারে পীড়িত হয়ে সমস্ত মুনি ঋষিগণ উৎপীড়িত, তিনি কঠোর তপস্যা করে, সেই মধুদৈত্য কঠোর তপস্যা করে শঙ্করকে শিবকে প্রসন্ন করে তার নিকট থেকে শূল লাভ করেন। সেই শূলটি যদি তার হাতে থাকে তাহলে তিনি আরো বেশি পরাক্রমী হন, তাকে কেউ বধ করতে পারেন না। দেবতা দানব দৈত্য এমনকি মনুষ্যগণ কেউ তাকে বধ করতে পারে না, সকলে তিনি অবধ প্রায়। সুতরাং আরো এই অস্ত্র পাওয়ার পরে আরো অত্যাচারী হয়েছেন, সমস্ত মুনি ঋষিকে নানা রকম উৎপাতে অত্যাচারে পীড়িত করতে থাকেন। তখন সমস্ত মুনি ঋষিগণ সেই রাজ্য থেকে তারা অযোধ্যাপতি শ্রী রামচন্দ্রের নিকটে গমন করেন এবং তার নিকটে নিবেদন করেন যে আমরা কোনো প্রকারে নির্বিঘ্নে ভজন সাধন করতে পারছি না, আপনারই রাজ্যের মতন আমাদের রাজ্য আপনি সেখানে এইরকম দৈত্যের উৎপীড়ন থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের সাধন ভজনে সহায়তা করুন। তখন ভগবান রামচন্দ্র তারই ছোট ভাই শত্রুঘ্নজিকে তিনি প্রেরণ করলেন এবং সেই মধুপুরে তিনি রাজতিলক দিয়ে তাকে রাজ্যাভিষেক করে সেখানে প্রেরণ করেন। আর মুনি ঋষিগণ বললেন, দেখো যে এই অসুরের হাতে যতক্ষণ শূল থাকবে এ কিন্তু অবদ্ধ, সুতরাং সাবধানে তার সঙ্গে যুদ্ধ কৌশল নিতে হবে। কোন এক সময় সেই মধুদৈত্য শিকার করতে গিয়ে বনে চলে গেছেন, তখন সেই মধুদৈত্যের গুহার নিকটে এসে শত্রুঘ্ন মহারাজ এসে নানা প্রকার তাকে আহ্বান করছেন যুদ্ধের জন্য। কিছুক্ষণ পরে যখন তুমি ফিরে এলেন নানা রকম হাতি মনে জানোয়ার মৃগ পশু পক্ষী ইত্যাদি বধ করে ফিরে আসেন, তখন এসে দেখেন যে যুদ্ধের জন্য শত্রুঘ্ন তাকে আহ্বান করছেন কিন্তু তার ভুল হয়ে গেছে, তিনি তখন মৃগয়া করতে গেছেন, সুতরাং শূল সেই অস্ত্র তিনি নিয়ে যাননি। এদিকে শত্রুঘ্ন বারের পর বার তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগলেন, সুতরাং বিনা সে শূলে কিছুতেই সে তার প্রবল পরাক্রম দেখাতে পারছে না, শূল নিয়ে যাওয়ার জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন কিন্তু শত্রুঘ্ন তাকে বাধা দিয়ে তাকে পরাস্ত করলেন, সেখানে তাকে বধ করলেন। এই লবণাসুর তিনি ওই মধুদৈত্যের পুত্র ছিলেন, মধুদৈত্যের নিকট থেকে শূল পেয়েছিলেন, লবণাসুর সেখানে বধ হয়ে এই মধুপুর একে মধুপুর বলা হয় এবং লক্ষণ বললেন প্রভু রামচন্দ্রকে, আপনি যে লঙ্কা থেকে বরাহদেবকে আহ্বান করেছেন সেই বরাহদেবকে আমাকে প্রদান করুন। তিনি সেই বরাহদেবকে মথুরাতে এখন পর্যন্ত বিরাজিত আছেন, তার সেবা করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে শত্রুঘ্নের মন্দির আছে, মধুদৈত্যের গুহা আছে, কৃষ্ণ কুণ্ড বা মধু কুণ্ড বলা হয় এখানে বর্তমান, পাশে বলদেবের মন্দির আছে, বলদেব এখানে কৃষ্ণ পায়, বলদেব প্রভু যখন চার মাস জন্য এখানে এসেছিলেন বৃন্দাবনে দ্বারকা থেকে সেখানে এসে তিনি কৃষ্ণর বিরহ গোপীগণকে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি গোপীগণের বিরহ দেখে তিনিও বিরহান্বিত হয়ে গেছেন এবং কৃষ্ণকে কিছুতেই আরোহণ করতে পারেননি। তার বিরহে তিনি এমনই মগ্ন হয়ে গেছিলেন, ভাবাবিষ্ট হয়েছে, কৃষ্ণের মূর্তি ধারণ করেছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ পায়ে হয়ে গেছিলেন, বলদেব প্রভুর মন্দির ছিল। পাশে পূর্ব দিকে একটুখানি গেলে ধ্রুবটিলা বর্তমান, ধ্রুবটিলা এই এখানে মধুবনে সপ্তম বর্ষীয় বালক যখন পিতৃ সিংহাসনে পিতার কোলে বসতে পারেনি এবং তার যে ছোট মা বা মাতা সুরুচির নিকট ভর্ষণা পেলেন, যদি তুমি পিতার কোলে বসতে চাও পিতৃ সিংহাসনে তাহলে আমার গর্ভে জন্ম নিতে হবে, আমার গর্ভে জন্ম বিনা তুমি পিতার কোলে বসতে পারবে না। তাই অত্যন্ত ভর্ষিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মা সুরুচির নিকটে গিয়ে বললেন, আমি তো পিতার অধিকার, পিতার কোলে বসার যে আমার অধিকার, স্নেহ পাওয়ার যে অধিকার, সেটাকে আমি বঞ্চিত হলাম, কি করলে আমি এই অধিকার লাভ করতে পারবো? আমি অত্যন্ত মন্দ মুখী, আমি দুর্ভাগা, তাই তোমাকে পিতৃ স্নেহ দিতে পারিনি। একমাত্র প্রদান করতে পারেন পদ্মপালা সুলোচন হরি, তুমি যদি হরি আরাধনা করো, হরি যদি প্রসন্ন হন, তিনি সব কিছু তোমাকে প্রদান করতে পারেন। হরি আরাধনা করতে হবে, সে হরি থাকেন কোথায়? তো মা বললেন, শোনা যায় যে তিনি মনে থাকেন, বরং যত যত হরি আশ্রয়, মনে গিয়ে হরি পা পর্ব আশ্রয় করে সাধন ভজন করতে হয়, এটাই হলো শাস্ত্রের বিধান। বরং শাস্ত্রী সেই মনের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন এই কথা বলাতে তিনি সপ্তমবর্ষীয় বালক সেই অবস্থায় নাঙ্গা পায়ে তিনি এই মধুবনে এসে উপস্থিত হন। সেখানে পথে নারদ ঋষির সঙ্গে তার দর্শন হয়, নারদ ঋষিকে দেখে তিনি ভ্রম করেছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সেই পদ্মপালা সুলোচন হরি? বললেন, না আমি পদ্মপালা সুলোচন হরি নয়, কিন্তু তুমি এত ছোটবেলায় এই এইরকম ভাবে বনের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে কেন এসেছো? এখানে নানা প্রকার সব জন্তু জানোয়ার আছে, হিংস্র ব্যাঘ্রপুর তোমাকে মেরে ফেলবে, সুতরাং আর তুমি ছোটবেলায় এত খেলাধুলা করবে, পড়াশোনা করবে, রাজ্য সুখ ভোগ করবে, এখন তোমার সাধন ভজনের সময় নয়, তুমি চলে যাও। বললেন, না আমি পদ্মপালা সুলোচন হরি যতক্ষণ না লাভ করবো ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাব না। তখন তাকে তার নাচনবান্ধা তার প্রিয় প্রতিজ্ঞা দেখে প্রসন্ন হয়ে তাকে বললেন, যমুনা স্নান করে এসো, তাকে মন্ত্র প্রদান করলেন, ওম নম ভগবতী বাসুদেবায়। এই মন্ত্র লাভ করে তিনি জপ করতে লাগলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সাধন, কঠোর সাধন তিনি শুরু করলেন। ছ মাসের মধ্যে তিনি পদ্মপালা সুলোচন হরি দর্শন পেয়েছিলেন এবং প্রথমে আহার ত্যাগ করলেন, তারপরে জল ত্যাগ করলেন, তারপরে বাতাস ত্যাগ করলেন, প্রভৃতি সব কিছু ত্যাগ করে সমস্ত বৈরাগ্য চরম বৈরাগ্য এবং পদ্মপালা সুলোচন হরির আরাধনা করে তিনি ভগবানকে দর্শন পেলেন। দর্শন পেয়ে তিনি কিছু বলতে যাচ্ছেন, স্তব করতে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ভগবানের কোন মহিমা বর্ণন করতে পারছেন না। তখন ভগবান তার সে সঙ্গরূপে তার মস্তকে স্থাপন করলেন, তারপরে তিনি তখন সব স্থিতি করতে লাগলেন, বললেন, আমার নাম বরদ, সুতরাং তুমি বর নাও, তোমাকে তো বর দিতে হবে। বললেন, আমি আর বর চাই না, স্বামীর পিতাকি বরণ যা আছে তার জন্য বিচ্ছিন্ন দিব্যরত্ন আমি কাজ খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু মণিমুক্ত সমন্বিত হীরা টুকরো পেয়ে গেছি, আর আমার পরের জাগতিক সুখের কোনো প্রয়োজন নাই, অতএব আপনাকে পেয়ে গেছি, আমি সব পেয়ে গেছি, আর আমি কোনো বর চাই না। বললেন, তথাপি তোমাকে বর নিতে হবে, তুমি আমার রাজ্যে ফিরে যাও, নিষ্পন্ন রাজ্য উপভোগ করো এবং তুমি আমার নাম স্মরণ রাখবে, আমার কথা জগতে প্রচার করে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তিনি 36,000 বৎসর পর্যন্ত পরবর্তীকালে তিনি যখন অগ্রগণ হচ্ছেন তখন তার জন্য একটি রথ এসে উপস্থিত হল, সেই রথে করে তিনি ধ্রুবলোকে ভগবান তাকে যে অক্ষয় ধারণ প্রদান করেছেন, যদিও সেটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আকাশের ওই উত্তর দিকে যে ধ্রুব তারা দেখা যায় ওই অক্ষয় ধ্রুব লোকে তাকে প্রেরণ করছেন। সেখানে যেতে যেতে তিনি বললেন, আমি তো একা যেতে চাই না, আমার সেই মা কোথায়? বললেন, দেখো তোমার পূর্বে তোমার সাধন ভজনে যে সাবগুলো কৃষ্ণ নাম দেয় কুল পবিত্র বসুন্ধরাষ্ট্র ধন্যা যে সাবগুলো বৈষ্ণব নাম দেয় যে কুলের উত্তম ভাগ হতে জন্মগ্রহণ হয় তার পিতৃকুল বা 21 পুরুষ পর্যন্ত তারা সব স্বর্গে পিতৃলোকে নৃত্য করতে করতে তারা বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন। মধ্যম ভাগবতের ক্ষেত্রে 14 পুরুষ পিতৃকুল মাতৃকুল এবং কনিষ্ঠ ভাগবতের ক্ষেত্রে সপ্তম পুরুষ তারা সমস্ত নৃত্য করতে থাকেন এবং বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সুতরাং তোমার মাও তোমার আগে আগে তিনি অধ্যায়গুলোতে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সমস্ত লীলা মহিমা এখানে বর্ণনা হয়েছে। আজ এই চুক্তি রাখছি, বাচ্চা
मधुमान मधुर वन है। यहां पर बहुत मधु बलदेव कृष्ण गोचारण में आकर के मधुपान करते थे और गोपियां कृष्ण प्रेम की मधुपान करती थी। सतयुग में ध्रुव जी वहीं पर तपस्या किया, त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वहीं पर वध किया। असल में मथुरा उसी मधुबन के अंतर्गत ही है, उसी मधुबन के अंतर्गत में ये है। त्रेता युग में लवणासुर का वध किया, द्वापर युग में कृष्ण ने यहां पर गोचारण की लीला की। एक दिन यशोदा जी ने कृष्ण को कहा, तूने मक्खन चुराया? कृष्ण ने कहा, मैयारी मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन तो ही पठाए। तात्पर्य ये भैया, मैंने कम मक्खन खाया, सवेरे होते ही तुमने मधुबन में गौओं के पीछे भेज दिया। शाम हो गई, लौटा तो मैंने मक्खन कब खाया? नहीं, तुमने मक्खन खाया। कृष्ण ने कहा, जी मैं तेरा बेटा नहीं हूं, इसलिए तू ऐसा कह रही है, तो मैं कहीं चला जाऊं। यशोदा मैया जी का हृदय द्रवित हो गया, गोदी में ले लिया और बोली, नहीं तुमने मक्खन नहीं खाया। और कृष्ण कहते हैं, ये मैंने ही माखन खाया। बहुत करुणा का दृश्य यहाँ पर होता है। इसी लीला के पश्चात में बलदेव प्रभु भी ब्रज में आए और गोपियों से विरह की बातें सुन करके वो स्वयं गौर वर्ण से काले वर्ण हो गए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के पहले अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु वहां आए थे और स्वयं महाप्रभु वहां पर आए, और हमारे जितने आचार्य लोग हैं, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर और श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जी प्रति वर्ष परिक्रमा करके ब्रज में आते थे, पैदल परिक्रमा करते थे। मैंने उनके साथ में पैदल ब्रज की मंडल की परिक्रमा की है। इस वर्ष भी आप लोग वहां गए थे। इसके बाद में मानसरोवर तालवन में धेनकासुर को बलदेव प्रभु जी ने मारा, अज्ञानता का विनाश किया और अज्ञानता के बाद में दूर होने पर भगवान की भक्ति होती है। इसके बाद में मानसरोवर गए, राधा जी ने यहीं पर मानगली है, दानगली मानगली गुमानगली इत्यादि मठ के पास में मान किया, मानसरोवर में रोती हुई चली गई। कृष्ण को पता लगा तो कृष्ण भी रोते हुए पीछे पीछे गए और उनका मान दूर किया। तत्पश्चात भांडीर में गए, वहां की बातें बतलाई होगी। किस प्रकार से नंद बाबा जी कृष्ण को गोदी में लेकर के गोचारण देखने के लिए गए, इतर में घना घोर मेघ छा गया, दो एक बूंदे आने लगी, अंधकार हो गया। उसी समय में नंद बाबा ने देखा राधिका नजर ने वहां पर कैसे पहुंच गई और किशोरी उम्र की हो गई और नंद बाबा के हाथ से कृष्ण को ले लिया और सघन वन में चली गई भांडी भट्ट के पास में, और वहां पर कृष्ण भी किशोर बन गए, राधिका जी किशोर और ललिता विशाखा इत्यादि सभी सखियां वहां पर आने लगी, विवाह का गीत गाने लगी। ब्रह्मा जी आए और उनका गांधर्व भी विवाह किया। वहीं पर कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ में आकर के विविध प्रकार की भोजन क्रीड़ा किया करते थे। वहीं पर राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ। वहीं पर रास में सखियों को प्यास लगी तो उन्होंने बेणी से एक कूप बना दिया जिससे कि पानी आने लगा, सबको प्यास दूर की। वहाँ पर बलदेव जी की भी मूर्ति है और बहुत सी लीलाएं वहाँ पर हुई थी। वहीं पर सखाओं के साथ में खा रहे थे कृष्ण मंडली बद्ध होकर के, ब्रह्मा जी ने गायों को चरा लिया कि बछड़ों को चरा लिया, ये लीला वहीं पर हुई थी। इसके बाद में बंसी भट्ट वहाँ रासस्थली श्रीदान भैया जब कृष्ण चले आए मथुरा और मथुरा से द्वारका तो रोते 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 और ब्रज में प्रवेश नहीं किया, वहीं पर रह करके और रोते हुए वहीं पर बास करने लग गए। और सिद्धांत भैया को भी देखा और इसके बाद में यात्रा यहाँ पर लौट करके आई है।
Krishna, Krishna, Mantra, Mantra, Mantra. Today, by the grace of Sri Guru Gauranga, our Braj Manu Parikram experienced no disturbance and was very successful. First, we went to Maruvan, which was many pastimes of Bhagavan and his devotees were performed in all four lilas, all four yugas. In Satyuga, Juga performed austerities there. In Treta Yuga, Satyugna, the brother of Bhagavan Ramchandra, killed the demon Manavasura there. Mathura is included inside that Maruvan. In Dwapara Yuga, Swami Bhagavan Sri Krishna himself performed many pastimes of grazing the cows, etc. Suridas has written that Madhyasura asked Krishna, "You have stolen Bhata." And Krishna answered, "Man, Manihimatin Kaya, I have not eaten Bhata. How I had time, I had to go to Maruvan grazing cows, and only afternoon I have come back. I have no time to eat Bhata at all. Therefore I think you cannot really be my mother, otherwise how you could say such a thing?" Then Madhyasura, her heart completely melted, she took Krishna in her lap. "Oh my dear son, you have not eaten Bhata." Krishna also weeping, "Man, Manihimatin Kaya, I have definitely eaten Bhata." Also in now this Kali Yuga, Balaram came here for 4 months after Krishna went to Mathura, and there, seeing the separation of the gopis, Baladev lost his golden complexion and absorbed in thinking of Krishna. He also became blackish. There also Srimad Mahaprabhu, Sri Advaitacharya, Sri Nityananda, all our Gaudiya Acharyas, especially Sri Thakur Bhaktivinoda, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, our Param Gurudev, and also our Gurudev had performed Vajramanu Parikram by foot, and the first forest they would visit is Maruvan. We went to Talaban, where Sri Baladev Ji killed the ignorance in the form of the donkey demon, Devakasura. We know that once ignorance is dispelled, then bhakti can appear in the heart. We went to Mansarovar, where Srimati Radhika became angry with Sri Krishna, and by means of his Mangali, she went to Mansarovar and was weeping there, her tears formed Mansarovar, and Krishna also weeping followed her there and begged her man as a donation. We went to Bandirbhat, where Sri Nanda Baba was with Baby Krishna, and many dark clouds came at that time. Sri Nanda Baba gave Baby Krishna to Srimati Radhika, who at that time was at Kishori form. Srimati Radhika took the Baby Krishna there to Bandirbhat. Then Krishna became Kishore. All the Sakis appeared there. They began singing marriage songs. Ramaji came and personally performed the Gandhava Vivaha by exchange of garlands. There was a wrestling match between Krishna and Srimati Radhika where Krishna was defeated. There was many types of prasad pastimes with Krishna and the cowboy boys. Also there Ras was performed when the gopis were thirsty. Krishna made Vemukul by his flute. Also there is the mercy of Baladev Maharaj. Also there, Balarama Ramaji stole the calves of Sri Krishna from there. There is Mansibad, the place of Rasila. And also there, Sri Ram, after Krishna went to Mathura and to Dwarka, Sri Ram waited there in separation from Krishna. Weeping, he never returned home until Sri Chaitanya Mahaprabhu came on his Raja Yatra. Then he again met with Krishna in the form of Mahaprabhu. Gopemanandi.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ne Srimad Bhagavat aur dusre puranon se vachanon ko udhrit kar kehte hain Bhagwan jaise swachhamay hai, स्वप्रकाश हैं, भक्ति भी वैसे ही स्वप्रकाश है, किंतु शास्त्रों में देखा जाता है न जम न जोगेन सांख्येन दान व्रत तपो ध्वरै व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुवात जत्मानव। बहुत जत्न करने पर भी लोग योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ शास्त्र व्याख्या स्वाध्याय और सन्यास के द्वारा भक्ति को लाभ नहीं कर सकते। ये सब के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती। इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाया गया है महत कृपा साधुओं की कृपा मध्यम अधिकारी की कृपा के बिना सांख्य योग तप जप दान इत्यादि भक्ति के उदय का कारण नहीं हो सकते। किंतु साथ ही साथ में एक जगह और लिखा भागवत में ही दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संजनई श्रेयो विधि चन्नई कृष्णे भक्ति ही साध्यते। दान व्रत तपस्या होम जप वेद अध्ययन संयम अन्यान्य विविध श्रेयजनक मंगलजनक कार्यों के द्वारा भक्ति साधित होती है। तो ये भक्ति का द्वार है, भक्ति इसके द्वारा भक्ति होती है। फिर सामंजस्य कैसे होगा, उसके लिए कहते हैं प्रेमांग भूता निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति के संबंध में ये नहीं कहा गया। स्वरूप सिद्धा निर्गुणा प्रेम भक्ति उसके संबंध में ये श्लोक नहीं है। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को स्वरूप सिद्धा भक्ति निर्गुणा का लक्षण वर्णन करने से पूर्व सकाम भक्ति या सगुणा भक्ति, ये सकाम भक्ति है निर्गुण भक्ति नहीं, सगुण के वर्णन के प्रसंग में उन्होंने कहा कर्म निर्हारम उद्देश्य परमस्मिन् वा दर्पणम यतेत षष्टव्यम इति वा पृथक भाव स्वसात्विक। जो लोग पापों का क्षय करने के लिए भक्ति करते हैं कुछ लोग लोग मुक्ति लाभ करने के लिए ज्ञान भक्ति का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग योग सिद्धि के लिए भक्ति का आश्रय लेते हैं, और कोई लोग पापों का क्षय करने के लिए हरिनाम इत्यादि भक्ति का आश्रय लेते हैं। इस भाव से जो भक्त हैं उसको सात्विक भक्त कहते हैं, निर्गुण भक्त नहीं, भक्त हैं सात्विक हैं। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, पहले कह चुके हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति भक्ति है, कभी भी सात्विकी या नायिकी नहीं है। किंतु निर्गुण होकर के भी स्वेच्छापूर्वक अपना अपकर्ष हेयता नीचता दिखलाकर ज्ञान अंग भूता होकर ज्ञानियों को मुक्ति देती है। ज्ञानी लोग भक्ति के द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, क्योंकि ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। ये जो भक्ति मुक्ति देती है वो कौन है? निर्गुणा शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं है, इसलिए इसको सात्विक भक्ति कहते हैं। जो स्वयं नहीं अपना फल नहीं दे सकता, कर्म भी अपना जो अपना फल नहीं दे सकता, उसमें भक्ति का आश्रय कर ले करके जो भक्ति की जाती है उसको सकाम भक्ति या सात्विक भक्ति कहा गया। जो लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बनाकर भक्ति करते हैं, किंतु भक्ति के सहायता के बिना ज्ञान कोई मुक्ति इत्यादि नहीं दे सकता है, इसलिए ज्ञानी लोग मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, उनकी भक्ति भक्ति नहीं है, शुद्ध नहीं है, सात्विकी है। दान व्रत तपो होम इत्यादि इस आलोक श्लोक में ये ज्ञानंग भूता भक्ति की बात कही गई। और जो दूसरा श्लोक बतलाया गया श्रेय विविधस्य भक्ति साध्यते, उसमें दान व्रत तपस्या होम आदि की व्याख्या शुद्धा भक्ति के अंग में की गई है। जैसे दान विष्णु की सेवा के लिए वैष्णवों को जो दिया हुआ जाता है, दान जैसा दान के रूप में होने पर भी दान नहीं सेवा के लिए है, तो उससे भक्ति होगी। फिर से समझो, दान कहने से विष्णु या वैष्णवों के प्रति दिए हुए दान, विष्णु और वैष्णव की सेवा के लिए अर्थ इत्यादि देना, व्रत माने एकादशी व्रत इससे होगा, तपस्या माने कृष्ण के लिए एकादशी इत्यादि व्रत करके कृष्ण के लिए अपने भोगों को छोड़ देना, होम करने से वैष्णव होम अथवा होम करने से भगवत निवेदित प्रसाद इत्यादि दूसरों को देना। जप का तात्पर्य विष्णु मंत्र गायत्री काम गायत्री गोपाल मंत्र इत्यादि इसे समझो। इस प्रकार भक्ति के जो अंग हैं इनके आचरण से इनका अनुष्ठान करने से भक्ति हो गई, ये भक्ति के द्वार है। अब कहते हैं भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग इत्यादि निष्फल है। ज्ञान अपना फल स्वतंत्र रूप में नहीं दे सकता, योग नहीं दे सकता, भक्ति का आश्रय लेने पर ये देते हैं। अच्छा योग
So we are hearing continuing Siddhishna Chakravarti Thakur's Madhurya Kadambini. And we are hearing that Bhagavan and Bhakti are both self-manifesting, independent and completely spiritual. So here's Sri Krishna Chakravarti Thakur is taking two verses from the Srimad Bhagavatam that appear contradictory. In one verse, it said that Hari Bhakti is not achieved by the performance of vratas, vows, yajna, fire sacrifice, dhan, the giving of donations, sandhya varna, chanting of mantras at the conjunction of the morning and the evening. Neither is Hari Bhakti achieved by the performance of vows or different types of offerings. In fact, bhakti is not achieved by any of these things. Bhakti is achieved only by the mercy of Madhyamanikari devotee. Therefore, these things are not to be considered as bhakti itself. These activities are not surupsita bhakti. They are not nirgun bhakti. That is bhakti which is free from the modes of nature. These things, these activities are trayajanik. They are the causes of good fortune and they are considered the doors of devotion. In fact, these activities may be called sankara bhakti or devotion performed with material desires. Therefore, devotion which is mixed with a desire to be free from sin, or mixed with the desire to achieve yogic perfection, or mixed with the desire for liberation or achievement to the heavenly planets, this type of devotion cannot be called nirguna bhakti. It is rather called sattviki bhakti, or bhakti which is performed in the mode of goodness. But then on the other hand, Sri Krishna Chakravarti Thakur mentions another verse from the Bhagavatam which discusses that all these same activities actually can give devotion, like the performance of vrat, yajna, the giving of charity, sandhyavandam, vrat, home, etc. Therefore, how we can reconcile these two differences in the Srimad Bhagavatam? We should know that bhakti is completely free from the modes of nature. She is always nirgun or transcendental. Without her own violation, she appears in the mode of goodness to bestow liberation upon the jnanis. But she is always transcendental. We should understand that the processes of karma and jnana have no power to bestow material enjoyment or liberation independently. So, bhakti is always nirguna. But when it's performed with a desire for karma and jnana, then it's called sakam bhakti or sattviki bhakti. Means bhakti devi is so merciful, by her own independent desire, she appears in the mode of goodness to bestow liberation upon the mumukshus, the impersonalists. Jnana and karma are not independent as bhakti is. Jnana has no power to give liberation to anyone. Therefore, the jnanis also take shelter of bhakti by the process of sankirtan in order to achieve liberation. And bhakti devi appears in the mode of sattva-guna and gives them liberation. This is called sattviki bhakti. Therefore, when it is said that activities like giving of charity, performance of meditation, performance of fire yajna, giving of donation cannot be bhakti, in that sense, it's referring to when these activities are performed as limbs of jnana or jnanangas. But when these same activities are performed as limbs of surabhakti, then they can give devotion. How is possible? Dhan, or the giving of charity, can give devotion. It can be a limb of devotion when that charity is used for the service of Vishnu or the Vaishnavas. At that time it's not called dhan or donation, at that time we call it seva. How we perform vratas as means of devotion? When we perform fasting days like Ekadasi, Janmashtami, etc. How can Vaishnavas perform tapasya? When tapasya is performed with the idea of giving up all material enjoyment for the pleasure of Bhagavan, then it can be called a limb of devotion. Home, home can be also a living devotion when it's used a Vaishnava home, or when it's the distribution of Mahaprasad, then even home can be called a living devotion. And japa means here when we chant Vishnu mantra or the Gopa mantra. So, when these seven activities are performed as limbs of devotion, then they have the power to give devotion, otherwise they have no power at all. No premanandi.
Vimala Vaishnava Rati Upajive.
Hare Krishna, tomorrow is initiation day. So whoever wants initiation, they can register their name Shiva Jiva Prabhu. After class of Aruti, Jiva Prabhu will come here. You can register your name. You can stand up so